Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. आप सबको आने वाले नववर्ष की शुभकामनाएं, जो केवल अब 2.5 घंटे में आने वाली है, और हम एक दूसरे को अवश्य शुभकामनाएं देते हैं, नए साल की मुबारक हो आदि, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा हो तो उसके लिए जीवन में या आने वाले नए साल में नई बात कौन सी है? वही चीज जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये भौतिक जगत के 4 प्रमुख दुख हैं, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। तरह तरह के क्लेश और कष्ट यहां संसार के बद्ध जीवों को झेलने पड़ते हैं, और हर साल में हम ये प्रतीक्षा करते हैं या आशा करते हैं कि ये साल हमारा अच्छा होगा, हमें कष्ट उतना नहीं होगा जितना कि पिछले साल में हुआ था, आशा करते हैं कि सुख और मिलेगा। हर एक व्यक्ति ऐसे सोचता है और इस आशा में एक दूसरे को भी मुबारकबाद देते हैं कि आने वाला साल बहुत अच्छा हो। परंतु जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में नहीं लगेंगे, तब तक हम उन्हीं कार्यों को करेंगे जो कि हम पहले कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस भौतिक जगत में सारे बद्ध जीवों के 4 मुख्य कार्य हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। और भले ये 4 कार्यों के बाह्य रूप बदल जाएं, परंतु मूल रूप से सारे प्राणी करते यही 4 चीजें हैं, चाहे वो पशु हों, चाहे वो मनुष्य हों, चाहे वो देवलोक में रहने वाले हों। ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजें अवश्य सब जगह रहेंगी और रहती हैं। जब तक कि हम भगवान की भक्ति में नहीं लगेंगे, हम केवल यही 4 चीजें करेंगे। यदि कोई व्यक्ति प्रश्न करे कि हम तो इतना विश्वविद्यालय में जाकर विज्ञान सीखे हैं, बड़े वैज्ञानिक हम बने हैं, हमें नोबेल पुरस्कार मिला है और हमने बड़े बड़े कंप्यूटर बनाए हैं और अंतरिक्ष में घूमने वाले अभी रॉकेट आदि बनाए हैं, तो हम तो केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन नहीं करते, इतना ज्ञान है, विज्ञान है। परंतु श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस तरह का ज्ञान भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन का ही एक दूसरा रूप है, इसका ही विस्तार है। जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे पहली बार 1965 में, तो थोड़े समय बाद ही ऐसे खबर आई कि मनुष्य पहली बार चांद पे कदम रख चुका है। अपोलो नाम के जहाज से अमेरिका से लोग गए थे, ऐसा उनका कथन था। और फिर आगे चल के बहुत बातें होती रहीं और आज तक भी चर्चा जारी है कि हम इस ग्रह में हमारे रॉकेट के द्वारा जाएंगे, उस ग्रह में जाएंगे, ऐसी योजनाएं चल रही हैं विभिन्न देशों में। परंतु प्रभुपाद जी कहा करते थे, हम दूसरे लोक में पहली बात तो ये है कि हमारे वाहनों के द्वारा जा नहीं सकते, क्योंकि केवल पुण्य के द्वारा वहां जाया जा सकता है और वो भी मृत्यु के बाद। एक प्रकृति की शैली होती है, पद्धति होती है, प्रकृति का नियम होता है। हम स्वतंत्र भाव से जैसा चाहें अपने तकनीकी ज्ञान पे आधारित होकर हम जा नहीं सकते। और वैसे फिर भी कोई जा भी ले तो प्रभुपाद कहने लगे कि फायदा क्या है, क्या लाभ मिलेगा। यहां पृथ्वी में तो हमने नरक बना लिया है पृथ्वी का, एक दूसरे से युद्ध कर रहे हैं, इतना खून खराबा, इतना क्रोध, इतना वैर, इतनी ईर्ष्या, इतना द्वेष, इतनी घृणा, इतना क्रोध, इतना लोभ। आजकल आप समाचार पत्र खोल के देखिए, प्राय कहीं कोई अच्छी खबर पढ़ने में नहीं आती है, बुरे खबरें तो अनेक मिलती हैं। तो आजकल दुनिया की दशा ऐसी है तो किसने बनाई है? क्या पशुओं ने बनाई है? क्या कीड़े मकोड़ों ने बनाई है? नहीं, इंसान ने बनाई है। और इंसान में भी किसने बनाए हैं? जो शिक्षित व्यक्ति है उन्होंने बनाए हैं ना। ये सारी समस्याएं आती कहां से हैं? शिक्षित व्यक्तियों के द्वारा ही तो आते हैं। ये एटम बॉम्ब वगैरह का निर्माण करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? मनुष्य ही तो है, बड़े पढ़े लिखे बुद्धिमान मनुष्य होते हैं। तो यहां पृथ्वी लोक को हमने नरक लोक बना दिया है, यहां कोई शांति नहीं है, हर कदम कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई संकट। तो प्रभुपाद जी कहने लगे कि यहां पृथ्वी लोक को हमने बिगाड़ दिया है, अब दूसरे लोक में जाएंगे, चांद पे जाएंगे, कहीं गुरु उस लोक में जाएंगे तो वहां भी करेंगे क्या? आहार निद्रा भय मैथुन जो यहां करते हैं वहीं पे वहां करें, वही चीजें वहां करेंगे और उस लोक को भी बिगाड़ देंगे। जब हमें कुछ पता नहीं है कि आहार निद्रा भय मैथुन के अलावा कुछ और ऊंची चीज भी है भगवान की भक्ति, और यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, तब तक हम जहां भी जाएंगे उस स्थान को बिगाड़ते रहेंगे और हमारे कार्य वही रहेंगे, आहार निद्रा भय मैथुन। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि क्या लाभ है ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में जाके, जबकि हमारे कार्य मूल रूप से वही होंगे। तो भगवान की भक्ति करने में दुर्भाग्यवश लोगों को अधिक रुचि नहीं है। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में बताते हैं, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोभ्युपद्येत ग्रह व्रतानाम् अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। वो कहते हैं कि ऐसे कई लोग होते हैं दुनिया में जिनकी मति या जिनकी बुद्धि कृष्ण के प्रति झुकती नहीं है। मति ही न कृष्णे, कृष्ण के प्रति उनका झुकाव जाता ही नहीं है। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोवा, न अन्यों के प्रयास से, न स्वयं के प्रयास से, मिथोभिपद्येत, न दोनों को जोड़ के वो स्वयं भी प्रयास करे और दूसरे भी प्रयास करे कि ये कृष्ण का भक्त बने, फिर भी वो नहीं बनते हैं। क्यों? गृह व्रताणाम, क्योंकि उन्होंने व्रत लिया है प्राय कि हम केवल संसार में ही रमण करेंगे, संसार से किसी ऊंचे चीज में, किसी परे कार्य में, परम जो कार्य है उसमें हम रमण नहीं करेंगे, आध्यात्मिक जीवन हमें नहीं चाहिए, हमें केवल संसार का भोग चाहिए। तो ऐसे लोगों को कहते हैं ग्रह व्रताणाम, ग्रह व्रती, केवल ग्रह के भीतर अपने संसार की वृद्धि करना चाहते हैं। अदांत गोभीर, क्योंकि उनकी इंद्रियां संयमित नहीं है, नियंत्रित नहीं है, इसलिए वो तरह तरह के भोग कार्य में लग जाते हैं। विषताम तमिश्रम, और फिर नारकीय अवस्था की ओर बढ़ते जाते हैं। और ये इंद्रिय तृप्ति या भोग का कार्य क्या है? पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम, उसी चीज को चबाना जो हम अनेकों बार पहले चबा चुके हैं। जैसे कि हम गन्ने को कभी चबाते हैं और चबा चबा के उसमें से सारा रस निकाल लेते हैं, और जब वो बिल्कुल निरस रह जाता है फिर भी उसे चबाते रहते हैं तो क्या लाभ मिलेगा हमें? कोई रस नहीं मिलेगा उससे, कोई स्वाद नहीं आएगा उसमें, फिर भी हम चबाते रहते हैं तो इसमें कोई लाभ नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से शास्त्रों में बताया गया है कि हम इस संसार का भोग करते हैं, इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं इन भोग के कार्यों के द्वारा, परंतु जितना भी हम भोग करें हमें ऐसे लगता है कि हम संतुष्ट हुए नहीं, हमें और चाहिए। जैसे अग्नि में यदि हम तेल या घी डाले जाएं तो अग्नि और भी प्रज्वलित रूप से जलती जाएगी, अग्नि बुझेगी नहीं, तो और भी जलते जलते हमारी इच्छाएं हृदय में अब बढ़ती जा रही हैं, तो संतुष्टि नहीं मिल रही है हमें। फिर भी क्योंकि एक आदत बन गई है और हम आदत से मजबूर हो गए हैं, इसलिए हम उन्हीं चीजों को पुनः 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 करते रहते हैं। यद्यपि हमने इसका स्वाद या इसका आनंद तथा कथित आनंद पहले अनेकों बार ले लिया है, न केवल इस जन्म में परंतु अनेक पूर्व जन्मों में। हर एक बद्ध जीव का यहाँ पे इतिहास बहुत लंबा है, न जाने कितने लाखों करोड़ों जन्म जो है हम सब ने बिताए हैं। 84 लाख योनियों में हम भ्रमण कर चुके हैं, कभी मनुष्य योनि, कभी देव योनि, कभी पक्षी योनि, कभी पशु योनि, कभी जलचर योनि, तो कभी कीड़े की योनि, कभी वृक्ष की योनि, ऐसे समस्त प्रकार के योनियों में हम घूम चुके हैं और हर एक योनि में एक विशेष प्रकार का भोग या सुख उपलब्ध होता है। इन समस्त प्रकार के सुखों का हम अनुभव कर चुके हैं और फिर भी संतुष्ट नहीं हुए हैं, और अब मनुष्य जीवन मिला है फिर भी संतुष्ट नहीं है, तो कभी नहीं होंगे जब तक कि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। इंद्रिय तृप्ति या संसार का भोग मतलब उसी चीज को पुनः पुनः चबाते रहना जो कि हम पहले चबा चुके हैं अनेकों बार। तो इसलिए यदि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे तो हमारे लिए नया साल क्या, वही पुरानी बात होगी, कोई नई बात नहीं है। नया क्या है इस चीज में, वही चीज है पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम, वही चलता रहेगा। आने वाले साल 2012 में भी वही चलेगा, फिर 2013 में भी चलेगा, और जब तक प्राण इस देह में रहेगा अंतिम क्षण तक वही प्रयास रहेगा, और अगला जन्म मिलेगा फिर वहां जिस योनि में जन्म मिला है वहां से वो प्रयास हम जारी रखेंगे। तो ये दुर्भाग्य की बात है। मनुष्य जीवन भगवान का अनमोल भेंट है भगवान की भक्ति करने के लिए। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसके लिए वास्तव में हर चीज नई होती है हर समय। जिस चीज में संसारी व्यक्ति रमण करता है उन चीजों में भगवान के भक्त रमण नहीं करते, जिन चीजों में भगवान के भक्त रमण करते हैं उन चीजों में संसारी लोग रमण करना पसंद नहीं करते हैं। या निशा सर्वभूतानाम यस्याम जागृति संयमी तस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साधारण जीवों के लिए प्राणियों के लिए रात है वो भक्तों के लिए दिन है, और जो भक्तों के लिए रात है वो अभक्तों के लिए दिन है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि रात में हम विश्राम करते हैं, दिन में हम क्रियाशील रहते हैं। तो जब हम कहते हैं कि अभक्तों के लिए दिन है और वो भक्तों के लिए रात है, इसका मतलब है कि जिन चीजों में अभक्त रमण करते हैं, जिसमें वो रुचि लेते हैं, उन चीजों में रुचि बिल्कुल भगवान कृष्ण के भक्त नहीं लेते हैं। जैसे कि आज सुनाई भी दे रहा है ना, उनके हृदय की धड़कन चल रही है। आज विशेष करके ये सत्संग क्यों बुलाया गया, क्षमा कीजिए, क्योंकि अंतिम समय में ही ये खबर सबको पहुंचाए कि आज सत्संग करेंगे, क्योंकि भक्तों से खबर आ रही थी सब जगह से कि सब जगह बहुत उत्पात होने वाला है, सब जगह सारी आवाजें आएंगी, रात को कोई सो नहीं पाएंगे, तो कम से कम मंदिर में आए, कुछ सत्संग करें, कीर्तन भजन कथा आदि हो तो अच्छा रहेगा। तो ऐन वक्त पर निर्णय हुआ कि चलो कर लेते हैं। तो अभी इसी वक्त जैसे कि ये कथा चल रही है, हम तो सुन ही रहे हैं, अच्छा है कि देख नहीं पा रहे हैं कम से कम, कि लोग बाहर क्या कर रहे होंगे, और जैसे रात और आगे बढ़ेगी तो बस और क्या कहना, नहीं कहें तो ही अच्छा है, वो करते रहेंगे। तो वो जिन चीजों में रमण कर रहे हैं और आगे तक करेंगे सुबह तक, वो भक्तों को उसमें रुचि नहीं है, इसलिए सारे भक्त यहां आके बैठे हैं, इसलिए आप सब बड़े बहुत विशेष व्यक्ति है, क्योंकि बाहर का भोग छोड़ के यहां आके भगवान की बातें सुनना आप पसंद करते हैं। और यदि हम उनसे कहें कि आप यहां आइए, तो उनको मजा नहीं आएगा इसमें, वो तो वहां रमण करना चाहते हैं, हम जिस चीज में आनंद लेते हैं उस चीज में वो आनंद नहीं लेना चाहते हैं। तो ऐसे है, सफेद और काले की बात है, सफेद अपनी जगह में है, काला अपने जगह में है। तो उसी तरह से भक्तों का जीवन और अभक्तों का जीवन अलग होता है, दोनों की दिशाएं अलग होती हैं। दोनों की दिशाएं क्यों अलग होती हैं, क्योंकि उनके लिए सुख या आनंद प्राप्ति की जो पद्धति है या जो विषय हैं वो अलग हैं। बस भक्त लोग कृष्ण में आनंद लेते हैं और अभक्त लोग माया में आनंद लेते हैं। इसलिए अभक्त लोग जो होते हैं वो केवल ऐसे अवसरों पर उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत क्रियाशील हो जाते हैं गड़बड़ में, बाकी समय वो क्रियाशील नहीं होते, उदास रहते हैं, क्योंकि वो माया की सेवा कर रहे होते हैं। और कृष्ण भक्त तो साल भर आराम से रहते हैं। आपने सुना होगा, माया दास सदा उदास, कृष्णदास बिंदास, है ना। तो कृष्णदास भगवान की सेवा करते रहते हैं तो साल भर बड़े आराम से रहते हैं, कोई समस्या नहीं होती है। वैसे कृष्ण भक्त तो जल्दी सो जाना चाहते हैं रात को सब, क्योंकि जल्दी सुबह उठना चाहते हैं, लेकिन आज मजबूरन हम लोग प्रवचन शुरू कर रहे हैं उस समय पर जबकि हमेशा प्रवचन समाप्त होता है, क्योंकि क्या करें, शहर में रहते हैं, वैसे भी घर में रहेंगे तो सो नहीं पाएंगे, हो सकता है कि कहीं कहीं किसी को प्रलोभन मिल जाए, चलो टीवी खोल के देख तो लेते हैं क्या चल रहा है सब जगह, या पड़ोसी के घर में कहीं कुछ चल रहा है वहां जाके तो देखें, वहां भी थोड़ा समय रहेंगे हम, हरे कृष्ण महामंत्र करते करते उनके साथ में रहेंगे, तो कहीं ऐसी भावना न हो, ऐसे विचार मन में न आए, तो चलो यहां कम से कम सत्संग हो जाए मंदिर में। तो इसलिए भगवान के भक्तों का जीवन अलग होता है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंतस परस्परम कथयंतस च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि उनके भक्तों की पहचान क्या है, कि उनका चित्त पूरी तरह से श्री कृष्ण में समाया हुआ है। कृष्ण भक्तों के लिए श्री कृष्ण ही प्राण धन है, और आपस में मिलके वो परस्पर एक दूसरे को कृष्ण की बातें सुनाते रहते हैं, कृष्ण कथा में ही रुचि लेते हैं। तुष्यंती च रमंती च, वो संतुष्ट होते हैं केवल भगवान की कथाएं सुनकर, भगवान का नाम लेकर, संसार के वस्तुओं में वो आनंद नहीं लेते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य आज है। काफी समय से कीर्तन चल रहा था और अभी थोड़ी कथा होगी और थोड़ी देर और फिर कीर्तन चलेगा। और ऐसे जब हम रात को घर सोने जाएंगे तो कम से कम कृष्ण का स्मरण करते हुए सोएंगे, और फिर हमारे लिए जो नया साल आएगा वो नया रहेगा, क्योंकि कृष्ण भक्ति में हर घड़ी नई होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये नित्य नव नवायमान है, भगवान कृष्ण नित्य नूतन है, नव किशोर है। भगवान कृष्ण कभी बूढ़े नहीं होते हैं, एक नव किशोर ही दिखाई पड़ते हैं सदैव, 15-16 साल के युवक के समान प्रतीत होते हैं। यद्यपि पुराण पुरुषम नव यौवनम च, यद्यपि वो सबसे पुराने हैं, सबसे बुजुर्ग हैं, परंतु दिखने में केवल एक 16 वर्ष के युवक के समान दिखते हैं, क्योंकि वो सच्चिदानंद विग्रह हैं, उनका शरीर चिन्मय है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से जो भी कुछ संबंधित है वो भी उन्हीं की तरह तरुण है, ताजा है, इसलिए नित्य नव नवायमान। यमुनाचार्य भी कहते हैं अपने श्लोकों में कि जब से मैंने श्री कृष्ण के बारे में देखा है या मैंने सुना है, कृष्ण भक्ति के रस का आस्वादन किया है, नव नव रस धामन उद्यते रंतुमासीत, यदवधि कृष्ण पद मम चेत पदारविंदे, कि जब से श्री कृष्ण के पदारविंदों में मेरा चित्त लगा हुआ है तब से मुझे नवी हर घड़ी नए रस का आस्वादन होता है। नव नव रस धामन उद्यते रंतुमासीत। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण भक्ति आज कर रहे हैं, भगवत गीता या श्रीमद् भागवत को हम आज सुन रहे हैं तो कल हम उब जाएंगे कि अरे श्रीमद् भागवत कल भी सुने थे, आज क्या सुनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं प्रतीत, ऐसा नहीं लगता हमें। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत सदैव ताजे ताजे लगते हैं, रसमय लगते हैं, घिसे पिटे कभी नहीं लगते हैं। जैसे पहले भी हम बता चुके हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की कथा एक के बाद एक लगातार 108 बार सुने। ऐसा नहीं कि एक बार सुना और उन्होंने सोचा दूसरी बार जब कथा चल रही तो उन्होंने हमने सुन लिया है, नहीं, वो और भी सुनना चाहते थे, क्योंकि इसमें रस निराला ही है, हर घड़ी में यह रस रहता है। राजा परीक्षित भी ऐसे ही कहते हैं कि ये नित्य, ये हमेशा नया और ताजा रहता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति या कथा सुनने से मन और कानों को बहुत अच्छा लगता है। भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात क उत्तम श्लोक गुणानुवादात, ये हमारे लिए औषधि है, महा औषधि, ये भवरोग को दूर करने के लिए ऐसी औषधि है जो कि हमें बहुत अच्छी लगती है, हमारे कानों के लिए भी और हमारे मन को भी अच्छा लगता है। तो कौन ऐसे व्यक्ति है जो कि उत्तम श्लोक श्री कृष्ण की कथाओं को नहीं सुनेगा, ऐसा राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत में कहते हैं। तो भक्तों के लिए यद्यपि वो भगवत गीता श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों से सुनते रहते हैं, उनके लिए हर कथा, हर कीर्तन, हर भजन, हर अध्ययन का अध्याय वो नया ही रहता है, नवीन रहता है, और नए नए साक्षात्कार मिलते हैं, नए नए चीजों को सीखने मिलता है, भले हम उन्हें पहले सुन भी चुके क्यों ना हो, लेकिन दोबारा उस चीज को सुनने से हो सकता है कि और कोई चीज गहराई में समझ में आती है। तो हाँ, यदि नए साल का मुबारक कहना है तो कृष्ण भक्तों के लिए वास्तव में ऐसा ये नया साल है, करने वाले वही चीज है हम, कृष्ण की सेवा, जैसे जो अभक्त हैं वो भी वही चीज, उनकी चीजें करने वाले हैं जैसे वो पहले कर रहे थे, लेकिन उनके कार्य में वो कार्यों में उब जाते हैं, लेकिन भगवान के भक्त उब नहीं जाते हैं। कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि आप लोग ये हरे कृष्ण कहते हो, क्या आप उब नहीं जाते, दिन भर ये हरे कृष्ण कहते रहते हो? क्योंकि वो भौतिक दृष्टि से देखते हैं, उनको लगता है कि जैसे समझ लीजिए कोई भी एक भौतिक शब्द लीजिए, कोका कोला कोका कोला कोका कोला बोलते रहिए, कितने समय तक बोल पाएंगे आप? उब जाएंगे, बहुत ही जल्दी उब जाएंगे। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम कितने वर्षों से बोले जा रहे हैं, सुबह दोपहर शाम रात को बोले जा रहे हैं, उब नहीं जाते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का नाम दिव्य है, रसमय है, नित्य नवनवायमान है। तो यद्यपि भक्त भी वही चीजें करते हैं जो कि वो पहले कल कर रहे थे, लेकिन भक्त के लिए आने वाला कल जो है वो नया होगा। ये आश्चर्य की बात है। आयुर हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तम चयन असो तस्यर्ते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। तो जो कृष्ण भक्त दिन भर प्रतिदिन भगवान कृष्ण की कथाओं में, भगवान श्री कृष्ण के नाम में, उनकी सेवा में, दर्शन आदि में अपना समय बिताता है, उसके लिए हर दिन जो व्यतीत होता है वो उसे अमृतत्व की अवस्था तक ले जाता है। परंतु जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, उनके लिए हरेक सूर्योदय और आने वाला सूर्यास्त, सूर्यास्त और सूर्योदय और सूर्यास्त, ये उसके लिए मृत्यु के द्वार ही बन जाएंगे और उसके जीवन की अवधि एक दिन से और घटती जाएगी। अब सूर्योदय हुआ, शाम को सूर्यास्त होगा, तो उस समय ऐसे व्यक्ति का जो कि कृष्ण भक्त नहीं है, उसको क्या लाभ मिला? केवल रहने वाले जीवन की अवधि है जो शेष है, उसमें एक दिन कम हो गया, बस मृत्यु के एक दिन करीब वो व्यक्ति पहुंच गया। परंतु कृष्ण भक्त के लिए ऐसा नहीं है। हर एक दिन जो बीतता जाता है, कृष्ण भक्त भगवान के वैकुंठ जगत या गोलोक वृंदावन को प्राप्त करने के लिए एक दिन और करीब पहुंच जाता है। बाह्य दृष्टि से ऐसा क्यों ना लगे कि दोनों एक जैसे दिखते हैं? एक भक्त बता रहे थे कि उनके एक रिश्तेदार है, वो उनको बोल रहे थे, आप में मुझ में अंतर क्या है, आप भी खाते हो मैं भी खाता हूं, आप भी सोते हो मैं भी सोता हूं, और ऐसे अनेक चीजें बोलते गए, आप भी करते मैं भी करता हूं, तो अंतर क्या है हमारा? तो ऐसे अभक्तों को लगता है, क्योंकि दिखने में भक्त भी दूसरों की तरह ही साधारण लगते हैं। ऐसा नहीं कि भक्तों के पंख भी हैं और वो भी कुछ विशेष दिखते हैं, सूर्य के समान चमक रहे हैं, ऐसे भी नहीं, साधारण लोगों की तरह दिखते हैं। परंतु अंतर है। प्रभुपाद जी कहते हैं अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में युद्ध कर रहे थे, अपने तीर चला रहे थे बड़े जोर से, दोनों ही क्रोधित थे, दोनों ही शूरवीर योद्धा थे, युद्ध में एक दूसरे को या सामने वाले को ललकार रहे थे। कार्य बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो दोनों के एक जैसे थे, परंतु दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। अंतर किस में था? पहली बात, उनके कार्य करने के उद्देश्य में। दुर्योधन केवल अपने घमंड से प्रेरित होकर, अपने अहंकार से, अपने लोभ आदि, द्वेष आदि से प्रेरित होकर युद्ध कर रहा था, और अर्जुन प्रेम के कारण, शरणागति के कारण युद्ध कर रहा था। अर्जुन का युद्ध करना वो श्री कृष्ण के चरण कमलों में एक समर्पण था, शरणागति का एक कार्य था। और दूसरा अंतर दोनों में यह है कि दोनों की गति में अंतर है। अर्जुन तो श्री कृष्ण के पार्षद हैं, शुद्ध भक्त हैं, इसलिए वो श्री कृष्ण के धाम में जाएंगे, और दुर्योधन जैसे व्यक्ति जो भगवान को भूल के द्वेष, काम, क्रोध आदि का आश्रय लेके कार्य करते हैं दुनिया में, उन्हें बारंबार जन्म लेना पड़ता है। फिर ये आहार निद्रा भय मैथुन जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चक्र चलते रहते हैं। तो इस दुनिया में कृष्ण भक्त भले दूसरे लोगों की तरह दिखाई पड़े, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए हम भी इस दुनिया में रहते हैं, साधारण व्यक्तियों की तरह रहते हैं, फिर भी हमें विश्वास होना चाहिए, क्योंकि हमने श्री कृष्ण का आश्रय लिया हुआ है, इसलिए हमारा भविष्य उज्जवल है। तो भक्तों का संग हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। तो अन्य भक्तों को भी हमें साधारण नहीं समझना चाहिए, जैसे अभक्त भक्तों को साधारण समझते हैं, भक्त होने के बाद भी हमें अन्य भक्तों को साधारण नहीं समझना चाहिए। यार ये भी तो 5 साल भक्ति कर, मैं भी तो 4 साल कर रहा हूं, कोई कम तो 1 साल ही का अंतर है बस, मैं भी तो कर रहा हूं 16 माला जप, मैं भी तो उतना ही अभी आज मैं भी उतने ही श्लोक सीख गया, अब मैं भी पुस्तक वितरण करता हूं, मैं भी कीर्तन अच्छी तरह से कर सकता हूं, मैं भी आरती उतारना जानता हूं। तो ऐसी भावना हमारे मन में भी आ सकती है, परंतु सदैव हमें याद रखना चाहिए कि ये सामने वाले भक्त हैं, बहुत विशेष हैं। हमारा कितना सौभाग्य है कि हमें भक्तों का संग मिला है, भक्तों के संग में रह के कृष्ण भक्ति करने का सुअवसर मिला है, बहुत दुर्लभ है ऐसा सौभाग्य। इसलिए इसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो आइए अब एक भजन हम गाते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, और इसके बारे में फिर थोड़ी चर्चा करेंगे।
शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलति करमूल, सेवा परम सिद्धि प्रेमलति करमूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलति करमूल, सेवा परम सिद्धि प्रेमलति करमूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, माधवतीथि भक्ति जननी जतन पालन करे, तिथि भक्ति जननी जतन पालन करे, माधवती थी भक्ति जनने जतन पालन करे थे भक्ति जनने मतन पालन कृष्ण बसती बोली परम आदर बोरे कृष्ण बसती बोली परम आदर बोरे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल गौर आमार जिस स्थाने करल ब्राह्मण रंगे गौरामार जिस स्थाने करल ब्राह्मण रंगे शैशव स्थान हेरियुबामी प्रणय भक्त संगे शैशव स्थान हेरियुबामी प्रणय भक्त संगे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल मृदंग वाद्य सुनित मन अवसर सदा जाचे मृदंग वाद्य सुनित मन अवसर सदा जाचे गौरविहित कीर्तन सुने आनंद हृदय नाचे गौरविहित कीर्तन सुने आनंद हृदय नाचे शुद्ध भक्त चरण रेडो भजन अनुकूला जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद हाय जुगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद हाय प्रसाद सेवा करिते हाय सकल प्रपंच जाय प्रसाद सेवा करिते हाय सकल प्रपंच जाय शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला जे दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाय जे दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाय चरण सिधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाय चरण सिंधु देखिया गंगा सुख सीमा पाय शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषण जानी तुलसी देखी जुड़ाय प्राण माधव तोषण जानी गौर प्रिया शाक सेवने जीवन सार्थक माने गौर प्रिया शाक सेवने जीवन सार्थक माने। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जा। भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाय जा। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करता, प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करता, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल,
विनोद ठाकुर विरचित शरणागति से ये भजन है शुद्ध भक्त। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्त के चरण धूलि ये हमारे कृष्ण भजन के लिए बहुत अनुकूल है। भक्तों की पद धूलि, भक्तों का अवशिष्ट, भक्तों का पद जल, ये बहुत बलशाली माना जाता है। कृष्ण भक्त धूलि और कृष्ण पद जल, कृष्ण भक्त भुक्त अवशिष्ट ए तीन महाबल, ऐसा कविराज गोस्वामी बताते हैं चैतन्य चरितामृत में। तो कृष्ण भक्त के जो अवशिष्ट होते हैं उसके पद की धूलि और पद का जल तीनों बहुत बलवान होते हैं, लेकिन भक्त पद धूलि का ये सही तात्पर्य क्या है कि हम एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे की बात माने कृष्ण भक्ति में, एक दूसरे की प्रेरणा, एक दूसरे को प्रेरणा दें भक्ति में, ये एक भाव है। और जो हमसे वरिष्ठ हैं उनकी हम सेवा करें, जो साथ में हैं उनकी भी सेवा करें, तो भक्तों के संग में प्रेम से रह के बड़े सहयोग की भावना से स्वार्थ, अहंकार, लोभ, क्रोध आदि को त्याग के जब हम भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे तो वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी के चरण धूलि हमें प्राप्त होंगे। अन्यथा ये कोई एक बाह्य या शारीरिक कार्य नहीं है कि केवल थोड़ी चरण धूलि ली और अपने शरीर पे लगा दिया, वो अच्छी बात है, उससे लाभ तो होगा ही, परंतु वास्तविक अर्थ ये है कि भक्त समाज में सभी भक्तों को चाहिए कि वो एक दूसरे की अच्छी तरह से सेवा करें, दुर्गुणों को त्याग करके। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। कृष्ण भक्ति ये एक लता के समान है और ये लता का मूल क्या है? वैष्णव सेवा, भक्तों की सेवा। बहुत बड़ी चीज है, ये आसानी से नहीं मिलती है भक्तों की सेवा। यदि अवसर भी मिले तो हमारा अहंकार हमें सेवा करने नहीं देगा, तो अवसर मिलने पर भी हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत दुर्लभ चीज है, इसे पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई विरला एक ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति मिलता है जो वैष्णवों की सेवा करना बहुत पसंद करता है। वास्तव में ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली है। यह है सच्चा भाग्य कि हमें वैष्णवों की सेवा करने का अवसर मिले। भगवान कृष्ण की सेवा तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन इसलिए भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को मेरा भक्त मानता है वो मेरा भक्त नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को मेरे भक्तों का भक्त मानता है तो वो मेरा भक्त है। ऐसा आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ही कहते हैं। तो भक्तों के बीच में बड़े नम्रता से, प्रेम से रह के, सेवा भाव में रहना, ये कृष्ण प्रेम के लता का मूल है, जड़ है। ऐसे भाव को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। केवल शास्त्रीय ज्ञान से, विद्वत्ता से और सेवा में, किसी विशेष सेवा में दक्षता या निपुणता या प्रवीणता प्राप्त करके हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इन कार्यों को करते करते हमारी सेवा भाव जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया बाह्य दृष्टि से हमारे कार्यों को देखती है। भगवान बाह्य कार्य तो देखते ही हैं, परंतु साथ साथ हमारे हृदय को भी देखते हैं। तो जहां ये सेवा भाव होता है सही, भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं और ऐसे व्यक्ति को शीघ्र भक्ति में प्रगति करा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य बाह्य कार्यों के लिए कोई महत्व नहीं है, अवश्य है, परंतु ये भाव एक वैसी वस्तु है जिसके प्यासे और भूखे भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए उनको भावग्राही जनार्दन कहते हैं। वो प्रचार ग्राही जनार्दन या अर्चना जनार्दन या पुस्तक वितरण जनार्दन या कीर्तन जनार्दन, मंदिर मार्जन जनार्दन, रसोई सेवा जनार्दन, ये से रसोई तो बहुत सारे लोग दुनिया में करते हैं, पुस्तकों का वितरण बहुत से लोग दुनिया में करते हैं, मूर्ति की सेवा भी बहुत सारे लोग करते हैं। जितनी भी सेवाएं भक्त लोग करते हैं ऐसे भी अनेक लोग करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण देखना चाहते हैं कि हमारा भाव क्या है, किस भाव से हम ये सारे कार्यों को कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। और यदि हमारे अंदर वैष्णवों की सेवा करने की वृत्ति हो, वो भाव हो, तो यही भाव हमारे सारे कार्यों में दिखाई पड़ेगा। चाहे हम पुस्तक वितरण कर रहे हों, अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हों, रसोई कर रहे हों, प्रचार कर रहे हों, या कोई व्यवस्थापन का कार्य कर रहे हों मंदिर के लिए, हर चीज में ये दिखाई पड़ेगा। तो मूल है सेवा भाव और वैष्णवों के प्रति सेवा भाव। यदि हमें दृढ़ विश्वास हुआ कि हम सारे वैष्णवों के सेवक हैं, चाहे वो वरिष्ठ वैष्णव हो या नवसुखिया वैष्णव हो, बल्कि हम सारी दुनिया के सेवक हैं, हम प्रचार भी करने जाते हैं बाहर तो सेवा भावना से, इस दृष्टि से नहीं जाते हैं कि हमें इनसे ज्यादा पता है, हमें इनसे ज्यादा ज्ञान है, हम इनका उद्धार करने जा रहे हैं, नहीं, ये भावना नहीं, हम भी इनकी सेवा करने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण इतने कृपालु हैं कि वो हमें एक अवसर दे रहे हैं कि इनको हम उनका संदेश सुनाएं। यदि भगवान हमारे पास किसी व्यक्ति को भेजेंगे नहीं हमारी बात सुनने के लिए, प्रचार किसको करेंगे हम? भगवान भेजते हैं इसलिए तो हम कुछ बोल सकते हैं किसी को, और भगवान दिखाते हैं कि ये सब हमारे हाथ में नहीं होता है। हमें याद है अनेक साल पहले जब हम प्रचार किया करते थे, एक कॉलेज में गए थे, पहली बार 400 विद्यार्थी आए और हम तो बहुत प्रसन्न हो गए। बहुत सारे सवाल जवाब काफी लंबे समय तक गया, फिर इतने प्रेरित हुए हम कि ऐसा इतनी अच्छी तरह से ये लोग स्वीकार कर रहे हैं तो अगले हफ्ते के लिए हमें दोबारा घोषणा कर दी कि करेंगे। और उस प्रवचन में कितने लोग आए थे आप कल्पना कीजिए, कोई अंदाज, कोई बता सकते हैं अंक? 35। और कोई? अच्छा, आपको बताते हैं, एक व्यक्ति है, एक ही, बस एक एक व्यक्ति आए। हम सोच रहे थे क्या हुआ ये, फिर हमें पता चला कि भगवान कृष्ण हमें बता रहे हैं कि ये नहीं सोचना कि तुम करता हो, प्रचारक हो, तुम प्रचारक नहीं हो, तुम करता नहीं हो, करने वाला मैं हूं, तुम केवल निमित्त हो। जैसे ही हमें लगने लगता है कि मैं प्रचारक हूं, मैं करने वाला हूं, मैं योग्य हूं, तो भगवान की कृपा भगवान छीन लेते हैं। हां, फिर भगवान हमें जब साक्षात्कार हुआ तब भगवान ने दोबारा कृपा कर दी और वो एक व्यक्ति जो आए वो भक्त बने, और उस एक व्यक्ति के कारण फिर हमें और प्रवेश मिला और 30 लोग भक्त बन गए। तो भगवान हमें ऊपर नीचे ले जाते हैं कभी दिखाने के लिए। कभी ऐसे नहीं सोचना कि तुम्हारे वजह से ये भक्त बने हैं, नहीं, इनको भक्त बनना था, इनका समय आ गया था, अनेक जन्मों से ये सुकृति अज्ञात सुकृति करते 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 अब भक्तों के संग प्राप्त करने के लिए तैयार हो गए थे, और मैंने तुम्हें योग्य समझा कि तुम जाके इनसे मिलो। जैसे कि भगवान गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानां यंत्रारूढानि मायया। मैं हर एक व्यक्ति के हृदय में विराजमान हूं और मेरे नियंत्रण में ही सारे लोगों का मिलन होता है, सबका भ्रमण होता है। तो जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो ये भी भगवान की योजना से ही मिलते हैं। तो भगवान ऐसे सिखाते हैं हमें। तो चाहे हम कितने भी वर्ष बिताए क्यों न हो भक्ति में, हम कितने भी वरिष्ठ क्यों न हो, कितने भी नवसुखिया क्यों न हो, सदैव हमें याद रखना चाहिए कि हम सेवक ही हैं, हम निमित्त ही हैं और कुछ नहीं है। जो भी शक्ति हमें मिलती है हमारे सेवाओं को करने के लिए, वो भगवान की कृपा से आती है, और भगवान की कृपा हमारे सेवा भाव पर निर्भर है। भगवान जब देखेंगे कि हमारा भाव अनुकूल है फिर वो खूब शक्ति प्रदान करेंगे और शक्ति प्रदान होने पर प्रचार खूब हो जाएगा, सेवा खूब हो सकती है। कृष्ण शक्ति बिन नहि तार प्रवर्तन, कविराज गोस्वामी बताते हैं। साथ साथ में नरोत्तम दास ठाकुर ये भी कहते हैं, छाड़ी वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे केवा, कि वैष्णव सेवा को यदि हम छोड़ दें, छोड़कर कोई भी व्यक्ति परम गति की प्राप्ति नहीं कर पाया है। दूसरे शब्दों में परम गति भगवान कृष्ण के लोक को हमें प्राप्त करना है तो वैष्णवों की सेवा किए बिना यह संभव नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर इस बात पे बहुत जोर दे रहे हैं। फिर कहते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन कोरी। माधव तिथि अर्थात भगवान श्री कृष्ण के विशेष दिवस, जैसे कि जन्माष्टमी है, एकादशी है, ऐसे अनेक पावन दिवस होते हैं, उनको मनाना, क्योंकि ये दिन भक्ति की जननी माने जाती हैं और इनका हम बड़े दृढ़ता से पालन करते हैं। जतने पालन करी, तो एकादशी में ज्यादा कृष्ण कथा, कृष्ण नाम आदि कर लेना, जन्माष्टमी आदि में व्रत का पालन करना, खूब सेवा करना आदि, ये हमारे भक्ति के लिए बहुत लाभदायक है। यहां तक कि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये भक्ति की जननी है, भक्ति की माता है। कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे भोरी। तो जहां कृष्ण का निवास स्थान है वहां भी मैं मेरा निवास स्थान बनाना चाहता हूं, बड़े आदर से मैं उसी स्थान में रहना चाहता हूं। आजकल लोग जब अपना घर बनाते हैं तो बाहर की दुनिया की बात कर रहा हूं, वो ये देखते हैं कि सबसे बढ़िया घर बने, बहुत बड़ा बने, अच्छा बने, मजबूत बने, दिखने में सुंदर हो और ऐसे कई चीजें देखते हैं। परंतु कितने लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हम घर बनाना चाहते हैं लेकिन मंदिर के बहुत पास में, ताकि हम हर दिन मंदिर में जाएं, हम भगवान की भक्ति करें, हम मंगल आरती आदि में शामिल हो जाएं। ऐसे कितने भक्त सोचते हैं, बहुत कम है। भगवद गीता के अनुसार जो निवास स्थान हमारे हो सकते हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक है तामसिक, जैसे शराब का अड्डा है इत्यादि, ये सब तामसिक स्थान है। और अभी ये सब चल रहा है, ये भी तामसिक है और राजसिक, क्योंकि दोनों कार्य चलते हैं, राजसिक तामसिक कार्य, तो इसलिए शहर को राजसिक स्थान मानते हैं, क्योंकि यहां तीव्रता से भोग का वातावरण होता है। देखिए संगीत का गुण ही देखिए, लक्षण ही देखिए, किस प्रकार का है ये संगीत, जो संगीत नहीं कह सकते फिर भी साधारण भाषा में भी, ये हमें कोई, हमारे मन में कोई भगवान के विचार उत्पन्न नहीं करता। तो हर चीज के लक्षण होते हैं, हर चीज को उनके गुणों से, लक्षणों से हम जान सकते हैं कि इसका परिणाम क्या होता है। तो इस संगीत का परिणाम क्या होता है और भगवान के भजन का परिणाम क्या होता है, अंतर है। तो ये राजसिक है क्योंकि ये शहरी वातावरण है। तो शराब के अड्डे आदि ये तामसिक स्थान है रहने के लिए, शहरी वातावरण राजसिक स्थान है रहने के लिए, और जो वन है और जो बहुत ही सुंदर स्थान है प्रकृति में, निसर्ग के दृष्टिकोण से जो बहुत सुंदर है, वो सात्विक स्थान होते हैं। और भगवान का धाम या भगवान का मंदिर, ये दिव्य होता है। तो ऐसे चार प्रकार के निवास स्थान हो सकते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि भले हम सब मंदिर में रह नहीं पाए, जैसे कि ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी मंदिर में निवास करते हैं, परंतु हम में से जो मंदिर में सदैव नहीं रह सकते हैं, हमें प्रयास करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा यहां आएं, ताकि ऐसे दिव्य वातावरण का लाभ प्राप्त कर पाएं। यहां भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मेरा प्रयास ये है कि जो भी श्री कृष्ण का निवास स्थान है उसे मैं मेरा निवास स्थान बना लूं। गौर आमार जेशव स्थाने करल भ्रमण रंगे शेषव स्थाने हेरे बो आमे प्रणय भकत संगे। बहुत सुंदर बात। गौर आमार मतलब हमारे, मेरे चैतन्य महाप्रभु, मेरे चैतन्य महाप्रभु जेशव स्थाने, जिन सब स्थानों में करल भ्रमण रंगे, बड़े आनंद से जिन्होंने जहां जहां भ्रमण किया, शेषव स्थाने हेरे बो आमे प्रणय भकत संगे, उन सब स्थानों को मैं जाके देखूंगा प्रेमी भक्तों के संग में। तो हमारे संस्था में हम अक्सर यात्राओं में जाते हैं, भक्त लोग मिलके वृंदावन की यात्रा करते हैं, मायापुर की यात्रा करते हैं, ऐसे अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। तो जब भक्तों के संग में हम रमण कर हम जाते हैं तो इसका आनंद, इसका लाभ कुछ और ही होता है। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत भ्रमण किया सारे भारतवर्ष में। पहले वो मायापुर और नवद्वीप में रहा करते थे और फिर जब अपने कार्य के लिए गए, पूर्व बंगाल में गए, फिर आए, फिर गया आदि गए, अपने पिता का श्राद्ध किया, फिर बाद में संन्यास आश्रम उन्होंने स्वीकार किया काटवा नाम के गांव में, फिर वहां से वो वृंदावन की ओर निकल पड़े लेकिन नहीं जा पाए, फिर वो जगन्नाथपुरी गए, जगन्नाथपुरी से दोबारा बंगाल में और काफी भ्रमण किया, फिर से आए, फिर आखिर वो दक्षिण भारत की यात्रा, पहले दक्षिण भारत की यात्रा में गए दो साल, अनेक वर्ष, पांच साल आए गए वैसे, अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे, जगन्नाथपुरी से नीचे गए कूर्म क्षेत्र होकर, जितने भी नरसिंह क्षेत्र हैं वहां से होकर तिरुपति आदि पहुंचे, रामेश्वरम तक, सेतु बंध, फिर अनंत पद्मनाभ का मंदिर केरल देश में, वहां से होकर उड़ुपी, उड़ुपी से गोकर्ण, गोकर्ण से पंढरपुर जाते जाते बेलगाम आए कि नहीं पता नहीं, लेकिन यदि वो चाहते तो रास्ते में पड़ जाता है, हो सकते थे कि यहां से आए, हो सकता है तिलकवाड़ी से भी गए होंगे, अब पता नहीं, कविराज गोस्वामी ने तो वर्णन नहीं किया है, परंतु यहां से अवश्य, यहां से नहीं भी गए होंगे तो यहां से पास से तो गुजरे होंगे अवश्य। फिर पंढरपुर जाके फिर से जगन्नाथपुरी की ओर गए, फिर आगे चल के वृंदावन की ओर गए, प्रयाग, वाराणसी आदि स्थानों से वृंदावन में उन्होंने काफी भ्रमण किया और मायापुर नवद्वीप के आसपास ही गौड़ मंडल भूमि में उनके अनेक भक्त निवास किया करते थे, तो वहां भी वो जाया करते थे, अंबिका, कालना इत्यादि। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जिन स्थानों में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भ्रमण किया, मैं उन स्थानों को देखना चाहता हूं, मैं भी उन स्थानों में जाना चाहता हूं प्रेमी भक्तों के संग में, और इससे आनंद और बढ़ेगा। देखो, देखिए, भक्तों का आनंद इन चीजों में होता है। मृदंग वाद्य सुनिते मन अवसर सदा जाचे। तो जब मैं मृदंग का वाद्य सुनता हूं कीर्तन में तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। हम संध्या आरती में भी गाते हैं ना, शंख बाजे घंटा बाजे बाजे करताल, फिर जोर से बोलिए, मधुर मृदंग बाजे परम रसाल। तो ये मृदंग परम रसाल बड़ा रसमय होता है, आनंद का होता है मृदंग की आवाज कीर्तन में। वैसे चाणक्य पंडित ने उनकी नीति शास्त्री में कहा है कि जब मृदंग बजता है ना, तो मृदंग की ध्वनि क्या है? वो मृदंग की ध्वनि वो अभक्तों को धिक्कारता है। किस तरह है? क्योंकि मृदंग में आवाज आती है धिक्तम धिक्तम धिगतम, बजाओ धिक्तम धिक्तम, कौन बजाओ धिक्तम धिक्तम धिगतम, बस। तो इसका क्या मतलब है? धिक्तम धिक्तम धिगतम मतलब धिक्कार 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 हो। किनका धिक्कार हो? जो कि माता यशोदा के पुत्र श्री कृष्ण के चरणों की सेवा नहीं करते हैं, जो कि वृंदावन की गोपियों का गुणगान नहीं करते हैं, और जो कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण नहीं करते हैं, उनका धिक्कार हो धिक्कार हो धिक्कार हो। धिक्तम धिक्तम धिगतम। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि जब मृदंग बजता है धिक्तम धिक्तम धिक्तम, तो मृदंग की आवाज का तात्पर्य यह है। मृदंग ये कहना चाहते हैं कि जो लोग सुनो सुनो, अभी मृदंग बज रहा है, सुनो सुनो, जो कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको, धिक्कार हो आपका, ऐसे घोषणा है, ऐसे चाणक्य पंडित कहते हैं। तो ये सारे वाद्य जो हैं, जैसे करताल है, मृदंग है, ये सब चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन के समय भी इस्तेमाल किए जाते थे। आप देखते हैं यहां भी मृदंग है और करताल कोई बजा रहे हैं, ओ देखो पीछे वहां करताल भी बजा रहे हैं। तो हमारे कीर्तन में मृदंग और करताल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका आनंद भक्त विनोद ठाकुर भी लेते हैं। गौरविहिता कीर्तन शुनि आनंद हृदय नाचे। तो ऐसे कीर्तन के समय मृदंग बजता है, करताल बजते हैं, मधुर ध्वनि से कोई कीर्तन करते हैं, तो ऐसे कीर्तन के समय में हृदय आनंद से नाचने लगता है, ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। युगल मूर्ति देखिए मोर परम आनंद है। जब मंदिर में आते हैं भगवान श्री कृष्ण के और श्रीमती राधा रानी के, गौर निताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आदि के सुंदर रूप का दर्शन करते हैं, तो हृदय आनंद से भर जाता है, क्योंकि भगवान के सुंदर रूप भगवान प्रकाश या प्रकट कराते हैं इस भौतिक जगत में, केवल इस उद्देश्य के लिए, हमारे हृदय को आकर्षित करने के लिए। जे दिने भजन देखी गृहते गोलोक भाए। प्रसाद सेवा कोरिते होय सकल प्रपंच जाए। प्रसाद सेवा करके सारे प्रपंच दुनिया पे मैं जय विजय प्राप्त कर सकता हूं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। केवल प्रसाद पाके, क्योंकि कृष्ण प्रसाद बहुत शक्तिशाली है। शरीर अविद्या जाल, शरीर अविद्या का जाल है। जड़ेन्द्रिय ताहे काल, खास करके इंद्रियां जड़ हैं, जड़ इंद्रियां हैं सब। जड़ेन्द्रिय ताहे काल, जीवे फैले विषय सागरे। ये इंद्रियां जीव को या आत्मा को इस विषय विस्मय विषय के सागर में डाल देती हैं। तो इन इंद्रियों के बीच में जीवे पहले विश्व सागर तार मध्य जिह्वाति लोभमय सुदूरमति। इस जीव को वश में करना बहुत मुश्किल है, पर कृष्ण बड़ा दयामय, कोरी बार जिह्व जाए, लेकिन कृष्ण बड़े दयामय हैं, इस जीव के ऊपर विजय प्राप्त करने का साधन उन्होंने दिया है। स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई। तो ये श्री कृष्ण का प्रसाद है जो अन्नामृत है। राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम डाको चैतन्य निताय। जब ये अन्नामृत का पान करते हैं कृष्ण प्रसाद का, तो जीव के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। जिसने जीव के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, अपने उदर और जननेन्द्रियों के प्रति भी विजय प्राप्त कर लेगा। तो केवल श्री कृष्ण के प्रसाद का सेवन करके हम सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है ये। फिर आगे बताते हैं, जे दिन गृहे भजन देखी गृहेते गोलोक भाए। जब मैं घर में लौट के आता हूं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, और मैं भजन देखता हूं कि मेरे परिवार के सदस्य भजन गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो गृहेते गोलोक भाए, अपने घर में ही मैं गोलोक वृंदावन देखता हूं। और भक्ति विनोद ठाकुर के 13 बच्चे थे। अभी साधारण घर में एक दो बच्चे होते हैं, इतना हल्ला करते हैं कि जब व्यक्ति घर में आता है वो देखता है ये गोलोक वृंदावन कैसे दिखेगा, ये है ना। एक भक्त बता रहे थे कि उनके एक मित्र हैं, उड़ीसा के भक्त थे, बुजुर्ग हैं, तो बता रहे थे कि उनके पुराने मित्र थे, वो बता रहे थे कि हमारे घर में बहुत झगड़े होते हैं, हर चीज पे झगड़े हो जाते हैं। वो अकेले बेचारे भक्त हैं और बाकी जो हैं भक्ति में इतनी रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन जैसे ही झगड़ा शुरू हो जाता है तो ये अपना करताल लेते हैं और जोर जोर से बजा के कीर्तन करना शुरू करते हैं। और जब भी उनसे कुछ कहता है तो उसमें ही जवाब देते हैं, उनको कीर्तन में ही जवाब देते, फिर कहते हैं सब धीरे धीरे शांत हो जाता है। एक बार एक भक्त से हम मिले थे, ऐसी बातों में जैसे हम सबसे पूछते हैं कैसे चल रहा है, बोले क्या बताएं आपको, वहां फोन पे बात हुई थी, क्या बताएं आपको, मैं क्या बात है, कोई समस्या है? तो बोले घर में बहुत बड़ी समस्या हुई, तो मैं बोला कीर्तन करो बैठ के। तो बैठ के कीर्तन करने लगे, अगले दिन सुबह फोन आया, महाराज अभी सब ठीक हो गया। सारे समस्याओं का समाधान। अच्छा, जिनके घर में कोई समस्या नहीं होती हो, हाथ ऊपर कीजिए। अरे कोई नहीं। लेकिन कीर्तन आपको रास्ता भी मालूम है, बस कीर्तन कीजिए, सारी समस्याएं दूर भाग जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, जेदी ने गृह है भंजन देखी गृहत नरक भाय होगा। भंजन मतलब तोड़ना, नहीं किसी को। जब देखते हैं कि परिवार के सदस्य लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो फिर गृहत गोलोक भाय कैसे होगा, गोलोक का दर्शन कैसे करेंगे। कभी कभी ऐसे झगड़ा होता भी है ना, ये भी भगवान की कृपा है, ताकि हम ज्यादा आसक्त न हो जाए। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चलेगा तो हम इतने आसक्त हो जाएंगे कि फिर सोचेंगे कि यही सच्चा सुख है। लेकिन हाँ, यदि परिवार के सारे सदस्य श्री कृष्ण को अपना परम उद्देश्य समझ के कार्य कर रहे हैं तो सब कुछ कृष्ण की सेवा में ठीक ही चलेगा। चरण सिंधु देखिया गंगा सुख ससीमा पाए। तो जब मैं गंगा जी को देखता हूं जो कि भगवान विष्णु के चरणों का अमृत है, तो बस उसके देखकर ही आनंद की सीमा नहीं होती है। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोषनी जानी। मैं तुलसी महारानी का दर्शन करता हूं और बड़ा प्रसन्न होता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुलसी महारानी भगवान कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है। गौर प्रिय शाक सेवन ने जीवन सार्थक मानी। चैतन्य महाप्रभु तरह तरह के शाक जो सब्जियां होती हैं उनको बहुत पसंद करते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि उन शाकों का सेवन करके मैं अपना जीवन सार्थक कर रहा हूं। भक्ति विनोद कृष्ण भोजने अनुकूल पाए जाहा प्रतिदिवस परम सुखे स्वीकार करो ताहा। तो भक्ति विनोद ठाकुर उन चीजों को स्वीकार करते हैं जो कि उनके भजन के लिए अनुकूल है प्रतिदिन, और यही हमारे जीवन का सिद्धांत होना चाहिए। जो हमारे भजन के लिए, हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करना है, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको त्याग देना है। बस ये सरल सिद्धांत। इस चीज, इस सिद्धांत के ऊपर अपना जीवन बिताएंगे तो अवश्य हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण भावनामृत में, कृष्ण की सेवा में आपको हार्दिक शुभकामनाएं एक नवीन वर्ष के लिए, जिसमें आपकी कृष्ण भक्ति के साक्षात्कार, कृष्ण भक्ति के अनुभव, कृष्ण भक्ति के सेवा और साधन करने के अवसर और बढ़ते जाएं और ज़्यादा सुखमय होते जाएं, और हम सब मिलकर भगवान की सेवा और अच्छी तरह से करें। इसी प्रार्थना से आज के प्रवचन को हम विराम देते हैं।